नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कल शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर दो दिन का ये शिखर सम्मेलन 22 नवंबर को शुरू हुआ था। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इटली की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इब्सा केवल तीन देशों का समूह नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों, तीन प्रमुख लोकतंत्रों और तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग की सफल यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई के उत्तराधिकारी होंगे। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई की अनुशंसा पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में अभूतपूर्व गति से मादक पदार्थ तस्करों के गिरोह को ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में हाल में 262 करोड़ रुपए का 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली में मेथामफेटामाइन की पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। सरकार द्वारा पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर 4 सरल और व्यापक लेबर कोड लागू करने के फैसले को देश भर के श्रमिक समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आकाशवाणी से बातचीत में मजदूरों ने अपनी खुशी साझा की। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मजदूर प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत ज्योत सिंह सोगरवाल ने नए लेबर कोड का स्वागत करते हुए कहा कि ये श्रमिकों के लिए अत्यंत अनुकूल है।
मैं मजदूर प्रतिनिधि के रूप में परमाणु बिजली घर में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी भारत सरकार द्वारा 4 लेबर कोड जो बनाए गए हैं, उसमें एक साल में जो है ग्रेचुटी, 40 साल की उम्र के बाद में फ्री हेल्थ चेकअप और समान वेतन, समान काम जैसी सुविधाएं ठेका श्रमिकों को मिलने वाली हैं और हम भारत सरकार के इस कानून का स्वागत।
कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं। KL राहुल 2 रन और जायसवाल 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।